चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं ये गाना क्यों गा रही हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि आज हमारे साथ नरेन नहीं है, क्योंकि वो हमारे प्रवासी दोस्तों की तरह अपने घर अपने माता पिता से मिलने गया है। तो आज का जब चले शहर की ओर का सफर आप लोगों को मेरे साथ ही तय करना होगा। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपना आज का प्रोग्राम, जिसका नाम है जब चले शहर की ओर। तो दोस्तों आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं। अरे अरे आप कहाँ घुसे चले आ रहे हैं, आपको मालूम नहीं है प्रोग्राम चल रहा है?
एक्सक्यूज मी, क्या ये जब चले शहर की ओर प्रोग्राम है?
हाँ, लेकिन आप हैं कौन और यहाँ क्यों आए हैं?
मेरा नाम नवीन है और मुझे नरेन ने भेजा है।
नरेन ने भेजा है, लेकिन क्यों और ये आपकी आवाज को क्या हुआ है?
ए अंजलि, मुझे नरेन ने इसलिए भेजा है क्योंकि आप अकेले ये प्रोग्राम कभी नहीं संभाल सकती। हाँ, और रही बात मेरी आवाज की, तो ये मेरा बोलने का स्टाइल है। हाँ
स्टाइल है, अजब बेवकूफी भरा स्टाइल है।
अरे अरे अंजलि, आप तो बेकार में नाराज हो रही हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि नरेन ने जाने से पहले मुझे बताया था कि आज हम अपने प्रोग्राम में लोगों से बात करेंगे कि क्या कभी उन्हें किसी ने बेवकूफ बनाकर ठगा है।
ठीक है ठीक है, हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन आज का धारावाहिक सुनने के बाद।
हाँ भाई और बहनों, तो ठीक है, सुनते हैं आज का धारावाहिक चले शहर की ओर।
दोस्तों अब तक आपने सुना, चंदर परेशान होकर कविता को फोन करता है। कविता उसे स्टेशन पर मिलने के लिए बुलाती है। चंदर कविता से मिलकर अपनी परेशानी बताता है। उधर गांव में रोशन बीमार है और माजी को लगता है कि रोशन को किसी की बुरी नजर लग गई है। इसके लिए वो पहाड़ी वाले बाबा को बुलाने के लिए जाती है। वहीं मधु रोशन की हालत देखकर उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। अब सुनते हैं आगे की कहानी।
मनोहर, जो दवाई मैंने दी हैं उन्हें टाइम से खाना, ठीक है?
जी डॉक्टर साहब।
अब जाओ।
जी
डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब देखिए ना इसे क्या हो गया है, सुबह से रोए चले जा रहा था और यहाँ लाते लाते एकदम चुप हो गया। देखिए इसका बदन भी पीला पड़ गया है, मुझे डर है डॉक्टर साहब इसे पीलिया तो नहीं हो गया है।
इधर लाइए। हाँ इधर, यहाँ लिटाइए इसे।
जी
हाँ। ओह इसकी हालत तो बहुत खराब है, कब से दूध नहीं पी रहा था।
डॉक्टर साहब दो दिन से बिल्कुल दूध नहीं पी रहा।
आप लोगों ने इसे लाने में इतनी देर क्यों लगा दी? इसे पीलिया नहीं डिहाइड्रेशन हुआ है।
डॉक्टर साहब मेरा रोशन ठीक तो हो जाएगा ना?
देखिए घबराइए मत, मैं इलाज कर रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा।
डॉक्टर साहब कुछ भी करके मेरे बच्चे को बचा लीजिए।
दीदी दीदी संभालो अपने आप को, डॉक्टर देख रहे हैं ना, कुछ नहीं होगा हमारे रोशन को।
आप एक काम कीजिए, इन्हें थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाइए, तब तक मैं बच्चे को देखता हूँ।
जी डॉक्टर साहब। मीरा दीदी चलिए बाहर चलिए।
हे भगवान, कैसी माँ हूँ मैं, अगर रोशन को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मधु क्यों मैं हर बार माँ जी की बातों में आ जाती हूँ, क्यों मैं उनकी गलत बातों को गलत नहीं कह पाती।
रोशन को कुछ नहीं होगा दीदी, हौसला रखिए।
हेलो राम प्रसाद। हाँ वो रमेश और दिनेश से पैसे ले लिए थे। अरे वही यार तैराकी वाले 5,000 रुपए हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, ऐसा करना उन्हें जमा कर देना। अरे सुधीर के पास और कहाँ, सुनो बाकी दो लोग और आ रहे हैं, ठीक है? अरे वही यार जो पहले आए थे। हाँ अच्छा बाकी बातें बाद में करूँगा, ठीक है फोन रखता
हूँ। भाई वाह क्या कहने, तुम दोनों तो बहुत ही तेज दिमाग वाले हो। बहुत ही जल्दी सब कुछ सीख लेते हो हैं।
सर अब तो हमें नौकरी मिल जाएगी ना?
हाँ हाँ क्यों नहीं मिल जाएगी भाई, क्या मुझ पर भरोसा नहीं है?
नहीं नहीं सर भरोसा तो है, लेकिन देखिए ना इस अनजान शहर में बिना नौकरी के भटकते भटकते हमें कई दिन हो गए हैं, ऐसे में बिना नौकरी के कब तक गुजारा चलेगा?
कोई बात नहीं, अब जब इतने दिन परेशान रहे हो तो कुछ दिन और ही सही
है? क्या मतलब है आपका?
अब देखो भाई, मतलब साफ है, अंग्रेजी तुम लोग सीख ही चुके हो, तैरना भी तुम्हें आ गया है, बस अब एक वो क्या कहते हैं, हाँ वो मेडिकल चेकअप बचा है बस, जैसे ही वो हो जाता है उसके बाद तुम दोनों नौकरी पर। हाँ
मेडिकल चेकअप पर सर, वो किस लिए?
अरे भाई अब कंपनी को भी इस बात की तसल्ली तो देनी ही होगी ना कि जिन लोगों को हम उनके पास नौकरी के लिए भेज रहे हैं वो पूरी तरह से भले चंगे हैं।
और इसके लिए हमें कितने पैसे देने होंगे?
बस यही कोई 2000 रुपए।
तेरी
क्या कर रहा
है? मुझे पता था चंदर अभी पैसे बनाने के लिए चार बहाने और बताएगा। पैसे निकाल, हमारे सारे पैसे निकाल।
देख मैं पुलिस को बुलाऊंगा। छोड़ दे,
मैंने तुझसे पहले ही बोला था ना, ये आदमी सही नहीं है, ये हमें पागल बना रहा है, हमसे अलग अलग तरीकों से पैसे ऐंठ रहा है। कभी अंग्रेजी सीखो, कभी तैरना सीखो, और अब नया ये शगुफा मेडिकल चेकअप। मैं तुझे
सर, देखिए सर, सर हम लोग बहुत दूर से आए हैं, बहुत उम्मीद लेकर आए हैं, ये नौकरी हमारे लिए बहुत जरूरी है सर।
नौकरी? अरे तुम्हारे दोस्त को बात करने की तमीज तो है नहीं और तुम्हें नौकरी चाहिए?
अच्छा?
देखो ऐसे लोगों को नौकरी नहीं, लाते मिलती है लाते।
निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ, मैं रुक
जाऊंगा। गज्जू चल,
अंदर मैं से छोड़ूंगा नहीं यार, ये हमारे सारे पैसे खा गया।
चल गज्जू, चल चल गज्जू,
मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं पांडे, याद रखना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं।
चल तू मुझे नहीं छोड़ेगा? अरे ये तो हमारा रोज का काम है, और तुम जैसे लोगों से निपटना मुझे अच्छी तरह से आता है, देख लूंगा तुझे भी। अरे जैसे
मेरे बच्चे को बचा लो रोशन।
दीदी चुप हो जाइए ना, सब ठीक हो जाएगा।
अरे मीरा तू रो क्यों रही है? और रोशन कहाँ है?
माँ जी
खा गई डायन मेरे पोते को।
माँ जी ये आप
बोल बोल, तूने ऐसा क्यों किया? अरे किस जन्म का बदला लिया तूने हमसे जो हमारे बच्चे को ही खा गई? मधु हमने क्या बिगाड़ा था तेरा? मीरा मीरा देख, जान ले ली इसने हमारे रोशन की। अरे तूने हमारा इंतजार तो किया होता, पहाड़ी वाले बाबा सब ठीक कर देते, ये सब कुछ ये सब इसी की वजह से हुआ है, यही मेरे पोते की मौत की जिम्मेदार है।
लेकिन माँ जी
खबरदार जी, तूने मुझे माँ कहा।
अरे माँ जी ये आप क्या कर रही हैं?
डॉक्टर साहब ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है, अगर मेरा पोता घर पर होता तो पहाड़ी वाले बाबा उसे जरूर ठीक कर देते और वो इस वक्त जिंदा होता।
लेकिन माँ जी आपका पोता बिल्कुल ठीक है।
क्या?
हाँ लेकिन उसकी जान जा सकती थी, अगर उसे लाने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो।
क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप?
और इसके लिए आपको अपनी बहू का धन्यवाद करना चाहिए जो समय रहते उसे यहाँ ले आई और उसकी जान बच गई।
लेकिन वो पहाड़ी वाले बाबा ने तो कहा था कि।
कमाल है माँ जी, लोग इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और आप बाबाओं के चक्कर में पड़ी हैं।
डॉक्टर साहब अब कैसा है मेरा रोशन?
अब घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने दवाइयाँ दे दी हैं, जल्द ही आपका पोता ठीक हो जाएगा।
मधु मुझे माफ कर दे मधु, मैंने तुझे गलत समझा, मुझसे गलती हो गई है मधु, मैंने तुझ पर हाथ उठाया, तू भी मुझे मार मधु, हाँ मार मुझे।
नहीं नहीं माँ जी नहीं, क्यों मुझ पर पाप चढ़ा रही हैं? आप तो मेरी माँ है ना।
हाँ मगर माँ होने का ये मतलब तो नहीं ना कि मुझे तुझ पर हाथ उठाने का हक है।
माँ जी आप रोशन को बहुत चाहती है ना, इसलिए सब कुछ हुआ है, और फिर गलती तो किसी से भी हो सकती है ना
मधु।
माँ जी।
अरे माँ तू रो क्यों रही है, और रोशन कैसा है?
आप चिंता मत करिए, रोशन अब ठीक है, अंदर सो रहा है।
और इसके लिए धन्यवाद कर मधु का जो समय पर तेरे बेटे को डॉक्टर के पास ले आई, वरना पता नहीं आज क्या अनर्थ हो जाता।
मधु आज तुम्हारी समझदारी ने मेरे बेटे की जान बचा ली, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर।
नहीं नहीं जेठ जी, रोशन मेरा भी तो कुछ लगता है ना, और ये तो मेरा फर्ज था,
पर आपको रोशन के बारे में कैसे पता चला?
मैंने घर फोन किया था तो छुटकी ने बताया कि रोशन बीमार है और तुम उसे यहाँ लेकर आई हो, तो मैं फौरन गाड़ी लेकर यहाँ आ गया। डॉक्टर साहब, अब मेरा बेटा कैसा है?
अब वो खतरे से बाहर है और थोड़ी देर में आप उसे घर ले जा सकते हैं।
धन्यवाद डॉक्टर साहब।
दयाल पांडे, तूने हमें बर्बाद कर दिया, सब कुछ लूट लिया उसने।
गज्जू,
देख लेना, तूने देख लिया ना, मिल गई 50,000 की नौकरी। अरे मैंने पहले ही बोला था यार, ऐसे विज्ञापन अक्सर झूठे होते हैं, लेकिन नहीं, बंबई चलेंगे, बड़ी नौकरी करेंगे। अब पता क्या करें हम? सारे पैसे भी चले गए और ऊपर से दिल्ली वाली नौकरी को लात मार दी वो अलग।
गज्जू सब मेरी गलती है यार, मुझे तेरी बात मान लेनी चाहिए थी।
तो यार अब गलती मानने से क्या होगा? अब तो सब कुछ खत्म हो गया ना, ठन ठन गोपाल हो गए हम। इस दयाल पांडे के बच्चे को तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ।
तू क्या करने वाला है गज्जू?
मैं उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करूंगा।
यार लेकिन अगर पुलिस ने हमें ही उलझा दिया तो? यार तुझे तो पता है पुलिस वाले किसी के सगे नहीं होते, पता नहीं क्या क्या सवाल जवाब करेंगे। और वैसे भी पुलिस के पास जाने से पहले हमें रहने के लिए कोई ठिकाना तलाशना होगा। एक काम करते हैं, माया के घर चलते हैं।
माया के घर?
हाँ माया के घर।
यार कमाल है तू भी ना, यूं मुंह उठाए और चल दिए किसी के भी घर। अरे कम से कम उसको हमारे आने के बारे में मालूम भी तो होना चाहिए ना।
यार उस बारे में मेरी माया से फोन पर बात हो चुकी है और अभी कविता और राजेश भी शायद वहीं होंगे।
तुझे कैसे पता?
अरे माया ने बताया था।
माया ने बताया था? सुन ले चंदर, मैं इस शहर में अब एक दिन भी नहीं रुकना चाहता बस।
लेकिन गज्जू इस वक्त हम बिना पैसों के कहीं जा भी तो नहीं सकते, हमारे पास तो टिकट खरीदने लायक पैसे भी नहीं है।
सब तेरी वजह से हुआ है चंदर, सब तेरी वजह से हुआ है, तेरा लालच हमें ले डूबा।
हाँ यार मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैंने तो सब कुछ अच्छा सोचकर ही किया था, अब बुरा हो गया तो मैं क्या करूँ?
अब हम कर भी क्या सकते हैं? मेरी भी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो मैं तेरी बात मानता चला गया। अरे किसी को भी दिख जाता यार, हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है।
अब गलती मान तो रहा हूँ गज्जू यार, इस तरह अगर तू नाराज हो जाएगा तो मैं अकेला क्या कर पाऊंगा यार। अच्छा ठीक है, मैं तुझसे वादा करता हूँ आगे से जो तू कहेगा वही मैं करूंगा। माफ कर दे यार, गलती हो गई।
गलती हो गई?
अब तू चल रहा है ना माया के घर?
ठीक है चल।
ये हुई ना बात, देख यार हम सब मिलकर इस परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। तू परेशान मत हो, वो जो ऊपर बैठा है ना सब ठीक कर देगा। बुरे दिन दिखाए हैं तो अच्छे दिन भी वही दिखाएगा दोस्त।
चलो भगवान का शुक्र है कि हमारा बच्चा ठीक हो गया।
और माँ तुम्हें पता चली गया होगा कि तुम्हारी छोटी बुआरी कितनी समझदार है।
अरे मेरी तो छोटी और बड़ी दोनों ही बुआरी समझदार हैं। वो तो मुझ बुढ़िया की अक्कल ही खराब थी जो इन्हें समझ न सकी।
अरे आ गए आप लोग?
हाँ छुटकी, ये ले रोशन की दवाइयाँ संभाल के रख दे।
जी बौजी।
आज मधु ना होती तो भगवान जाने आज क्या हो जाता।
मधु बौजी आपके लिए डाकिया कुछ देकर गया है।
अच्छा
ये लीजिए। मीरा बौजी रोशन को मुझे दीजिए।
हाँ ये ले। अरे संभाल कर, देख कहीं जग ना जाए।
आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए।
अरे मधु देख तो सही इस लिफाफे में क्या है।
जी अभी देखती हूँ।
क्या लिखा है?
इसमें लिखा है अगले हफ्ते से मेरी परीक्षाएं हैं और परीक्षा केंद्र हरिद्वार में है।
अच्छा।
हाँ दीदी पर परीक्षा का समय सुबह का है और यहाँ से वहाँ पहुँचने में तो।
अरे बुआरी तू चिंता मत कर, ये हरिंद्र है ना जिस दिन तेरी परीक्षा होगी ये तुझे गाड़ी से लेकर जाएगा और वापस गाड़ी में ले आएगा, क्यों हरिंद्र?
अरे हाँ माँ बिल्कुल।
आँखों में जिसके कोई तो ख्वाब है, आरज़ू कीजिए फिर देखिए।
सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, क्या गाना था। अगर हमारे दरबारी होते तो हम गाने वालों को अपने रत्नों में शामिल कर लेते। अगर ये गाने वाले रत्नों में शामिल नहीं हुए, यदि नहीं हुए तो हम घुट घुट के मर जाएंगे। अंजलि तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा, घुट घुट के मर जाएंगे।
उफ,
दोस्तों, इससे पहले कि नरेन का ये दोस्त मुझे और आपको और परेशान करे, हम सुनते हैं कि हमारे श्रोताओं ने क्या कहा जब हमारे सामुदायिक संवाददाताओं ने उनसे पूछा कि क्या कभी उनको किसी ने बेवकूफ बनाने की कोशिश की है।
हाँ, मैं एक बार ठगी के शिकार हुई थी। एक आदमी आया, सेल्समैन, उसने मुझसे कहा कि बहन जी एक नई स्कीम चली है, आप उसमें 2000 रुपये जमा कर दीजिए, आप कोई भी चीज़ किस्तों पे लेना चाहेंगी तो आपको मिल जाएगा, जैसे कि गोल्ड। मैंने उसे 1000 रुपये दे दिए, बल्कि मैं 2000 दे रही थी, लेकिन उसने कहा बहन जी आप चलो 1000 रुपये ही दे दो। उसके बाद चला गया और दोबारा नहीं आया।
एक बार मैंने टीवी पे वो पढ़ा था कि 10वीं 12वीं पास करने की, यानी 100%, उसमें मैं यानी मैंने फ़ोन करके पता करा कि यानी उधर होते हैं पास। मैं उधर गया, जब उन्होंने फीस लेने के बाद ये चीज़ कहा कि तुम अपनी मेहनत पे पास हो गए, फीस लेने के बाद उन्होंने ये नहीं कहा कि हम गारंटी लेते हैं इस चीज़ की।
हाँ, मैंने मार्केट से खूब सारा सामान लेके आई तो दुकानदार ने मेरे से 1000 रुपये मांगे, मैंने उसको 1000 रुपये दिए और अपना सामान लेके घर आ गई। शाम को मेरे पति ने सारा सामान देखा और हिसाब वगैरह लगाया तो उन्होंने कहा ये 1000 रुपये नहीं बैठते हैं, ये 800 रुपये का सामान है। तो इस तरह से उस दुकानदार ने मेरे से 200 रुपये फालतू ले लिए और मैं 200 रुपये ठग गई।
हाँ जी, मैं एक बार ही उत्तरांचल से दिल्ली आ रहा था, तो मैं आनंद विहार बस अड्डे में उतरा, तो मैंने एक ऑटो किया जिसमें उस ऑटो में बैठा तो हम आपस में ऐसे बातचीत करने लगे, तो उसने मेरे को एक बीड़ी दे दी, उसने वो भी पी रहा था, मैं भी पीने लग गया। पीते पीते हमें नशा सा लगा, मतलब 2-3 दिन बाद होश आया कि मैंने जब देखा कि मेरा कोई सामान लुट गया, उसने मेरे को पता नहीं कहाँ उतारा, मेरे को कोई महसूस नहीं हुआ।
ओ री दुनिया दुनिया।
तो ये थे हमारे श्रोताओं के जवाब, जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं हमारे सामुदायिक संवाददाताओं का।
और अंजलि, बढ़ाते हैं अपने प्रोग्राम को आगे और मिलते हैं एक ऐसे इंसान से जिन्होंने ना केवल अपने साथ होने वाली धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस चौकी में की, बल्कि उन्हें इंसाफ भी मिला।
मेरा नाम सुनील है, मैं बदरपुर में रहता हूँ और मैं उत्तरांचल का रहने वाला हूँ। मैं 8 महीने पहले एक कपड़ों की दुकान में काम करता था। उस दुकान का मालिक मुझसे बहुत काम करवाता था, इसलिए मैं उस दुकान में नौकरी छोड़ना चाहता था। दुकान के मालिक ने मुझे 3 महीने की मजदूरी भी नहीं दी थी। मैंने मालिक से कहा, मालिक 3 महीने की नहीं तो 2 महीने की मजदूरी दे दो। उसने कहा, दे दूंगा मैं, कहाँ भागा जा रहा हूँ। इस तरह उसने मुझसे 1 और महीने का काम करवा लिया। फिर एक दिन मैंने अपने दोस्त को बताया और उसने मुझसे कहा, तुम्हें तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना चाहिए। फिर मैंने उसकी बात मान ली और थाने में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। उसके बाद पुलिस वाले उस दुकान के मालिक के पास आए और मालिक डर गया और वह पुलिस वाले को अंदर ले गया। फिर बाहर आया तो वह पुलिस वाला मुझसे कहने लगा, तुम मुझे सबूत दो कि 3 महीने की मजदूरी इस मालिक ने तुम्हें नहीं दिया। मैं समझ गया। मैंने कहा, साहब गरीबों की कौन सुनता है। तब पता नहीं उसे क्या हुआ और उसने मालिक से 2 महीने का वेतन मुझे दिलवा दिया। तब मैं बहुत खुश हुआ और पुलिस वाले का धन्यवाद किया। और मैं सभी श्रोताओं से ये बात कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी काम करते हैं वहाँ के मालिक से वेतन सिर्फ लें।
अच्छा नवीन, एक बात बताइए, क्या कभी आपने FIR दर्ज करवाई है?
अंजलि, क्या मैं तुम्हें झगड़ालू नजर आता हूँ?
अरे नहीं, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। वो क्या है ना कि आज हम काम की बात में अपने श्रोताओं को बताने जा रहे हैं कि पुलिस स्टेशन जाकर FIR कैसे दर्ज करवाई जाती है। क्या आप हमारे श्रोताओं को इस बारे में बताएंगे?
हाँ हाँ, क्यों नहीं।
तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम काम की बात की तरफ।
दोस्तों, FIR दर्ज करवाने के लिए जो भी पुलिस चौकी आपके सबसे पास है, आप वहां पर अपने साथ हुई धोखाधड़ी की रिपोर्ट लिख कर दे सकते हैं और फिर आपको उस शिकायत पत्र पर अपने हस्ताक्षर या अंगूठा लगाना होता है।
नवीन, तो क्या FIR दर्ज करवाने के बाद हमें FIR की कॉपी मिलेगी?
अंजलि, CPC की धारा 154(3) के अनुसार आप आधिकारिक रूप से FIR दर्ज करवाने के बाद उसकी कॉपी ले सकते हैं।
अरे वाह, आपने तो बहुत काम की बात बताई। मुझे लगता है कि अब हमारे श्रोताओं को नहीं लगेगा कि FIR करवाना झंझट भरा काम है।
ए अंजलि, तुम मेरे साथ रहते रहते काफी समझदार हो गई हो।
गलत फहमी तेरा ही आसरा। तो दोस्तों, ये तो थी काम की बात। और अगर आप इस संबंध में या किसी और विषय में किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें अपना सवाल हमारे नंबर पर SMS कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9197176782 3।
अपना दिल की बात परे बोदू ते माजी आछरी डांडियो माकी, परे बोदू ते माजी आछरी डांडियो माकी, सोचते थई मेरा के मना बोलिया, सोचते थई मेरा के मना बोलिया। सूटी माँ ओह भली सुन दिखेंदी वा, कै मां ना बोलिया, भली सुन दिखेंदी वा, कै मां ना बोलिया।
हो चला है हमारी आज की चिट्ठी का, लेकिन उससे पहले एक संदेश जो हमें भेजा है कुलदीप खंडवाल ने, जो जिला पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं। वो अपनी बहन को ये संदेश देना चाहते हैं कि मैं यहाँ पर राजी खुशी हूँ और तुम भी अपना ख्याल रखना।
फूलों का, तारों का, सबका कहना है एक हजारों में।
कुलदीप जी, उम्मीद है हमारे प्रोग्राम के जरिए आपका संदेश आपकी बहन तक पहुंच गया होगा। और दोस्तों, अब बारी है आज की चिट्ठी की।
दोस्तों, हमारे आज के विजेता हैं फरीदाबाद हरियाणा के सलीम खान। ये लिखते हैं कि मेरी उम्र उस वक्त 15 साल की थी जब मेरी मम्मी का देहांत हो गया और फिर मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली। कुछ दिन तो सब कुछ सही रहा, लेकिन उसके बाद मेरी मम्मी के सौतेले व्यवहार से तंग आकर एक दिन मैं पटना वाली ट्रेन में बिना टिकट के बैठ गया और रास्ते में मैं पकड़ा गया और 3 महीने के लिए पटना जेल भेज दिया गया। जेल से 3 महीने की सजा काटने के बाद जब मैं बाहर निकला तो एक आदमी से जान पहचान हुई। वो आदमी मुझे फरीदाबाद ले आया। उसने मुझे एक कंपनी में नौकरी पर लगवा दिया। मैंने वहाँ पर 2 साल तक काम किया और ओवरटाइम भी किया। हमने 25,000 रुपए इकट्ठा किए और उसके बाद 50 गज जमीन किस्तों पर ली। आज की तारीख में मैं सारी किस्तें उतार चुका हूँ, रजिस्ट्री भी करवा चुका हूँ। अब मेरी नौकरी भी अच्छी खासी चल रही है, दो बच्चे हैं, दोनों पढ़ रहे हैं। मैं अपने सभी देशवासियों से आग्रह करता हूँ कि दो से ज्यादा बच्चे नहीं बढ़ाएं, देश को सुखी रखें, भारतीय नागरिक होने के नाते भारत का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।
सलीम खान जी, आपका अनुभव तो अच्छा लगा ही, लेकिन आपका जो संदेश सभी भारतवासियों के नाम है, उसने दिल में देशभक्ति की भावना को फिर से बल दिया। चिट्ठी लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही सलीम जी, आपको दिया जा रहा है एक खूबसूरत सा ट्रैवल बैग। तो दोस्तों, आप भी ऐसा ही आकर्षक इनाम जीत सकते हैं। बस इसके लिए अपने खट्टे मीठे प्रवास से जुड़े अनुभवों को चिट्ठियों के जरिए हमें भेजते रहिए।
चिट्ठी लिखने के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम जब चले शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका एनक्लेव पार्ट 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद, हरियाणा 121003। इसके अलावा आप हमें अपने प्रवास से जुड़े अनुभव ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है shaherkior@gmail.com।
मैं जानता हूँ दोस्तों, आप हमें काफी देर से बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन हम अब आपको सुनवाएंगे प्यारे प्यारे संदेश।
मेरा नाम प्रियंका नेगी छ, मेरे गांव का नाम कठिया छ। मैं अपनी दीदी मित्तु को संदेश भेजना चाहूँ छ। हम उन तक बोलना चाहूँ छ कि दीदी, आपकी हमते बहुत याद आँजी छ। आप हमते के याद किया करो, कभी कभी हमते के फोन करा करो, हम आपते बहुत याद कर रहे छ। मामी सब ठीक ठाक छ, मामा जी सब ठीक छ, हमते मामा जी को सबूत है, आपते सबूत है, प्रणाम छ।
मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं दिल्ली मिठापुर में रहती हूँ। मैं ये संदेश गुरुद्वार अपनी पहली दिमंती को देना चाहती हूँ, जो कि गुरुद्वार में अकेली रहती है, उसके हस्बैंड कहीं बाहर रहते हैं, इसलिए मैं उसको कहना चाहती हूँ। और कैसी है, तो बच्चे का ख्याल रख रही है, नहीं रख रही है, और वहाँ का क्या हाल समाचार है। मैं यहाँ ठीक हूँ और मेरे घर वाले भी सब ठीक हैं। तुम्हारा बेटा कैसा है, और उधर गर्मी वर्मी पड़ रही है कि नहीं पड़ रही, और अपने बेटे का और अपना अच्छे से ध्यान रखना, और आस पड़ोस वालों से मिलजुल कर रहना।
मेरा नाम कुसुम गुसाई है, पौड़ी गढ़वाल में जोगीमणी। मैं अपनी दीदी को यह संदेश देना चाहती हूँ। दीदी क्या हाल है, और हो गए नीरज गौरव पास, हो गए और कौन सी क्लास में गए, और जिया जी की तबीयत कैसी है, अब ससुरा जी की तबीयत कैसी रहती है, फोन करके बताना।
मेरा नाम मोनी देवी छा, गाँव को नाम सेमवाड़ी छा, और मेरी भूली को नाम सुशीला देवी छा, और देहरादून अजयपुर रानी छा। मैं एक छोटो सी गीत बोल दू अपनी भूली की याद। प्यारी प्यारी भूली, प्यारी प्यारी भूली, याद आउंदी भारी।
तो दोस्तों, कैसे लगे आपको ये दिल को छू जाने वाले संदेश? अगर आप भी अपना कोई संदेश अपने परिवार तक भेजना चाहते हैं जो आपके लिए बेहद खास है, तो इसके लिए अपना फोन उठाइए और अपना नाम और पता हमारे नंबर पर SMS कर दीजिए।
हमारा नंबर है 9197176782।
इसके अलावा अगर आपके पास प्रवास से जुड़ी खास जानकारी है, तो आप वो जानकारी चिट्ठी अथवा ईमेल के जरिए हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस और पता एक बार फिर नोट कर सकते हैं। ईमेल आईडी है shaherkior@gmail.com, यानी shaherkior@gmail.com।
और हमारा पता है,
कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका एनक्लेव पार्ट 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद, हरियाणा 121003। और दोस्तों, जाने से पहले हम अपने सहयोगियों हेवलवाणी चंबा, मंदाकिनी की आवाज भणज, और दिल्ली और मुंबई के अपने सभी सामुदायिक संवाददाताओं का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और साथ ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी नवीन का भी, जिन्होंने पूरे प्रोग्राम में मेरा साथ दिया।
ए अंजलि, तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको तो ये प्रोग्राम पसंद आया ही होगा।
बिल्कुल। और दोस्तों, अब हमें इजाजत दीजिए जानकारी और मनोरंजन का ये सिलसिला जारी रखते हुए। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।